हाँ बिल्कुल, और गुरुदेव सबसे पहले यही बात साफ करते हैं कि ये बदलाव कोई आप समझे कोई जादू या चमत्कार नहीं है।
हाँ
बारी चीजें जैसे जप, ध्यान, अनुष्ठान वगैरह, ये सब मददगार हो सकते हैं, जरूर होते हैं, पर जो असल कायाकल्प है वो तो तभी होगा जब हम अपना नजरिया, अपनी सोच, अपना चरित्र, स्वभाव इनको बदलने के लिए सच में मेहनत करें।
अच्छा
सिर्फ आशीर्वाद या किसी मंत्र के भरोसे बैठना, वो कहते हैं, काफी नहीं है। खुद कोशिश करनी होगी, कष्ट सहने को तैयार रहना होगा। तो मतलब व्यक्तिगत प्रयास सबसे जरूरी है।
हाँ
उन्होंने समझाने के लिए महामना मालवीय जी का उदाहरण भी दिया है। हालांकि वो शारीरिक कायाकल्प था, पर शायद उसके सिद्धांत मानसिक बदलाव पर भी वैसे ही लागू होते हैं। इसमें कुछ खास चरण थे, है ना?
हाँ बिल्कुल। और वो चरण इतने तार्किक हैं, जैसे मान लीजिए किसी घर को ठीक करना हो, वही प्रक्रिया है। पहला चरण है मल संशोधन, मतलब गहरी सफाई, जैसे मालवीय जी के शरीर से पंचकर्म करके वो वमन विरेचन वगैरह से विषैले तत्व निकाले गए,
हाँ हाँ
वैसे ही हमें अपने मन में जो पुराने कुसंस्कार जमे हैं, जो गहरी आदतें हैं जो हमें रोकती हैं, या जो कषाय कलमश है मन का मैल, जैसे गुस्सा, लालच, मोह, इनको पहले पहचानना होगा और फिर हटाना होगा।
अच्छा, तो सबसे पहले ये अंदरूनी सफाई, पर ये होगा कैसे? ये सुनने में ही मुश्किल लग रहा है।
मुश्किल तो है, पुरुषार्थ तो चाहिए ही। पूज्य गुरुदेव प्रायश्चित पद्धति की बात करते हैं, मतलब अपनी गलतियों को मानना और उन्हें सुधारने का पक्का इरादा करना। बुरी आदतों से लड़ना होगा, एक तरह से उनके खिलाफ असहयोग करना होगा, उन्हें नकारना होगा। जैसे कपड़ा रंगने से पहले उसकी धुलाई कितनी जरूरी है ना,
हाँ बिल्कुल,
वैसे ही आत्मिक उन्नति चाहिए तो पहले ये आत्मशोधन तो करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है ये।
ठीक है, समझ गया। तो पहला कदम हुआ मन की पूरी धुलाई। इसके बाद मालवी जी तो शायद कहीं एकांत में चले गए थे।
बिल्कुल, वही दूसरा चरण है, एकांत सेवन। जैसे मालवीय जी 40 दिन बाहरी दुनिया से, उसके शोर शराबे से कटकर एक झोपड़ी में रहे, उसी तरह साधक को भी कुछ समय निकालना चाहिए दुनिया की भाग दौड़ से हटकर, शांत बैठकर अपने अंदर झांकने के लिए, आत्मचिंतन के लिए। ये एक तरह का मानसिक कुटी प्रवेश है।
लेकिन आज की जो जिंदगी है इतनी भागदौड़ वाली, इसमें ये एकांत कैसे मिलेगा? मतलब क्या शहर छोड़कर जाना पड़ेगा?
नहीं नहीं देखिए, पूज्य गुरुदेव का शायद मतलब भौतिक एकांत से ज्यादा मानसिक एकांत से है। वो कहते हैं, कल्पना करो कि तुम माँ के गर्भ में हो, या जैसे कुम्हार कच्चा बर्तन आवे में रखता है ना पकने के लिए,
हाँ
वैसे ही शांति से खुद को पकने दो। मतलब ये कि बाहरी चिंताओं से, भटकाव से थोड़ी देर के लिए मन हटा लो, बस अपने अंदर देखो, अपनी कमियों को समझो और भविष्य के लिए सही रास्ता तय करो। रोज की जिंदगी में भी कुछ पल तो ऐसे निकाले जा ही सकते हैं।
ये बात तो सही है, रोज कुछ मिनट ही सही। अच्छा, तो सफाई हो गई, फिर शांत चिंतन हो गया, और तीसरा चरण जिसे आपने टॉनिक सेवन कहा था?
हाँ, तीसरा चरण है टॉनिक सेवन, मतलब पोषण। जैसे मालवीय जी को शारीरिक शक्ति वापस लाने के लिए पौष्टिक आहार, रसायन वगैरह दिए गए,
हाँ हाँ,
वैसे ही हमें मानसिक और आत्मिक पोषण चाहिए। और वो मिलेगा सकारात्मक विचारों और प्रेरणाओं से। हो सकता है हम अब तक नकारात्मक सोच, गलत संगत, मतलब एक तरह के मानसिक कुपोषण के शिकार रहे हो।
तो ये मानसिक टॉनिक क्या है फिर, कहाँ से मिलेगा?
ये टॉनिक है अपनी चेतना को ऊंचे आदर्शों से जोड़ना, महान सत्पुरुषों जैसे ऋषि संत, उनसे प्रेरणा लेना, ईश्वर से जुड़ना, और सबसे जरूरी अपनी ही अंतरात्मा, अपनी जो उच्चतम चेतना है जिसे गुरुदेव सुपर कॉन्शियसनेस या पराचेतना कहते हैं, उससे जुड़ना। यही जो ऊंचा संपर्क है ना, यही असली टॉनिक है। ये हमें नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी और उन्नति की तरफ ले जाता है।
ये सब सुनकर लग रहा है कि ज्यादातर काम तो खुद ही करना है, व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर ही आधारित है ये साधना। तो क्या इसमें कोई बाहरी मदद, कोई मार्गदर्शन भी मिलता है?
हाँ हाँ बिल्कुल मिलता है। जैसे एक बच्चे को स्कूल में माँ बाप और टीचर का सहारा मिलता है ना
जी,
वैसे ही साधक को भी मिलता है। पूज्य गुरुदेव शांति कुंज जैसे माहौल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ माँ जैसा स्नेह और पोषण है, पिता जैसा अनुशासन और सहयोग भी है, और गुरु का मार्गदर्शन और शक्ति भी है, तीनों का सहारा मिलता है।
तो यहाँ गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
बिल्कुल, गुरुदेव ने पिंजरे का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, पता है?
अच्छा, क्या?
वो कहते हैं, हम यानी गुरु या बाहरी मदद पिंजरे की तीलियां काट सकते हैं, रास्ता खोल सकते हैं, पर पंख फैलाकर उड़ना तो पक्षी को खुद ही पड़ेगा।
सही बात है।
अगर तीलियां कट गईं, दरवाजा खुल गया पर पक्षी बैठा ही रहे, उड़े ही नहीं, तो उस आजादी का क्या फायदा। तो सहयोग का लाभ उठाना है, मार्गदर्शन लेना है, पर असली उड़ान, वो पुरुषार्थ, वो तो खुद ही करना होगा, उसे जीवन में उतारना होगा।
तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि ये जो आध्यात्मिक कायाकल्प है, ये कोई रहस्यमय चीज नहीं है। ये एक सचेतन, एक एक्टिव प्रक्रिया है, जिसमें पहले आत्मशोधन यानी सफाई, फिर गहरा आत्मचिंतन यानी एकांत सेवन, और फिर सकारात्मक विचारों से पोषण यानी टॉनिक सेवन, इन तीनों का संगम है। और इसमें व्यक्तिगत मेहनत सबसे ऊपर है, और गुरु सत्ता का मार्गदर्शन और सहयोग एक संबल की तरह है, एक सहारे की तरह है।
हाँ बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है कल्प साधना के, मल शोधन, एकांत सेवन, टॉनिक सेवन, जो सुनने में शायद किसी खास शिविर या जगह के लिए लगते हैं, इन्हें हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें, अपने कामकाज, अपने परिवार के बीच रहते हुए इन्हें कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि ये जो आंतरिक प्रगति है ये लगातार चलती रहे, ये सोचने वाली बात है।